मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 16 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दिव्या देवानंद जी बसोड़ गोंदिया महाराष्ट्र से, अभय कुमार निगम आपका गांव है भरुआ सुमेरपुर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, मंगल सेन आपका गांव है चंदेरी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, विवेक कुमार सौरभ आपका गांव है संडीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से और शिबानी बासफोर गुवाहाटी असम से। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं आप सबको कुछ जरूरी सूचनाएं देता हूं। तो सूचनाएं कुछ इस तरह की हैं कि शनिवार और रविवार को हम लोगों का डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, ये हर सप्ताह यही करीब खबर होती है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको शनिवार को एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आपको बकायदे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और साथ ही साथ आपको एक साप्ताहिक प्रश्न वीकली क्वेश्चन जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ उसकी फ्रेमिंग भी इस तरह से करने की कोशिश होती है जो एग्जामिनेशन के पैटर्न से मेल खाती हुई हो। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप इस बात को जान सकेंगे तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद कुछ अधिक गंभीरता दिखा सकें। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। आइए अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैं आपसे आज एक संस्था है IPCC उसके रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले दो घटनाओं पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, घटनाएं तो नहीं कहना चाहिए, न्यूज पर मैं बात करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स जानबूझ करके मैंने 14 अगस्त को ये बात आप सबको नहीं बताई थी, हालांकि आप इसके लिए मुझे दोष दे सकते हैं कि आप सबको 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन है राष्ट्र के नाम वह सुनना ही चाहिए। मैंने जानबूझ करके इसलिए आप सबसे नहीं बताया क्योंकि इससे पहले मैं लगातार आप लोगों से कहता रहा हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी का इस तरह का उद्बोधन होता हो आप सबको सुनना ही चाहिए, और क्यों सुनना चाहिए आप जानते हैं, वो हमारे राष्ट्र की सरकार के प्रमुख हैं, हमारे राष्ट्र प्रमुख हैं, वो राष्ट्रपति के बाद अगर हम देखें संवैधानिक रूप से तो ठीक है राष्ट्रपति प्रमुख हैं, अदरवाइज कार्यकारी की दृष्टि से प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं राष्ट्र को जो संबोधन करते हैं वह एक तरीके से सरकार की नीतियों के दायरे में आता है, राइट। इसीलिए जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए वे आपको ढेर सारे टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं, यस टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जितने टॉपिक आपको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे वो आ जाएंगे, लेकिन आपको एक दिशा बोध उससे जरूर हो जाता है कि किन किन टॉपिक्स पर आपको विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए। देखिए यदि आपने प्रधानमंत्री जी का कल का उद्बोधन सुना हो तो उसमें कुछ टॉपिक आपको बड़े प्रोमिनेंटली मिलेंगे, और अभी तो चूंकि देखिए सितंबर में एग्जाम होने हैं तो इस एग्जामिनेशन में वो टॉपिक शामिल हो सकेंगे उसकी तो थोड़ी सी कम ही संभावना रह जाती है, लेकिन अगले साल आप देख सकते हैं, और आपको जब जनरल स्टडीज के तहत करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए कुछ कहा जाता है तो उसमें हम आपको मानकर चलना चाहिए कि पिछले 1.5 साल की घटनाओं को और समाचारों को आप करंट अफेयर्स मान लें, यानी कि इस बार के 15 अगस्त में राष्ट्रपति जी ने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उनके अगले साल के मेंस में आने की संभावनाएं हैं, और केवल मेंस में ही नहीं बल्कि उनका संबंध प्री से भी होता है। अब देखिए संबोधन में कौन सी बातें हाईलाइट की गई, बहुत सी बातें हाईलाइट की जाती हैं, लेकिन आपको अपने लिए चीजें निकालनी है और यह बहुत बड़ी कला होती है, और सिविल सर्विस के सही परीक्षार्थी के रूप में आपको यह कला सीखनी ही होगी, नहीं तो इतना बड़ा टोकरा है जनरल स्टडीज का और उस टोकरे में इतनी सारी चीजें हैं कि आप छांटेंगे कैसे, यह बहुत बड़ी समस्या है। और सच पूछे तो ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है आपकी उस समस्या को सुलझाने का एक माध्यम तो है, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे तो। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्या कहा है, जल जीवन मिशन। आपको याद होगा कि जैसे ही बजट आया था तो मैंने जल जीवन मिशन के बारे में आप सबसे बहुत विस्तार से बातें की थी, और सरकार ने इस मिशन को शुरू भी कर दिया है, उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। आज कल उन्होंने राष्ट्र के संबोधन में ये बात कही, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही, और उसे एक अलग अंदाज में कहा कि परिवार छोटा रखना भी देशभक्ति है। मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल एक अलग डायमेंशन दे दिया। तो जनसंख्या नियंत्रण, डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है, तो अभी तक पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि पॉपुलेशन को लेकर के जनसंख्या नियंत्रण की उतनी बात नहीं हो रही थी जितनी यह कि हमारी जो जनसंख्या अभी की है उसका जो स्वरूप है वो कैसे हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से आप देखेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात होने लगी है, और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में सीधे सीधे इसे सामने रख दिया और उसे देशभक्ति से जोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हो गया है। प्लास्टिक के बारे में तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली बात की है और मैंने काफी कुछ आपको आर्टिकल प्रोवाइड भी किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक। अगर आपने फिल्म देखी हो मिशन मंगल तो उसमें भी एक छोटा सा हिस्सा प्लास्टिक के बारे में आया है। तो प्लास्टिक, इसके बाद उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जो बात कही है इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। बुनियादी ढांचे में 1,00,000 करोड़ रुपए वो लगाने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बुनियादी ढांचा तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल ही इम्पॉर्टेंट होता है। पर्यावरण की बात उन्होंने कही, और एक जो और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो है एक देश एक चुनाव। इस पर अब डेफिनेटली बहस शुरू होगी। इस पर 1 साल या 2 साल पहले प्री एग्जामिनेशन मेंस में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं कि बहस में क्या नई बातें उभर कर सामने आती हैं। तो हो सकता है कि अगले साल फिर इस पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कुछ प्रश्न दोहराए भी जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। मित्रों एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फ्रांसीसी यात्री हैं विलियम पिंच। ये 1608 से 1611 के बीच में भारत में आए थे, रहे थे, है ना, इस दौर में भारत में रहे, और उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी अर्ली ट्रेवल इन इंडिया। नाम है इनका विलियम पिंच और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम है कि अयोध्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस किताब का रेफरेंस आया है और अखबारों में इसका इसे दिया भी गया है। इसी तरह से सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए अपने क्वेश्चन उठाती है। उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि सिविल सर्विस में सिर्फ राइटर के नाम नहीं पूछे जाते, कुछ और भी बातें पूछ ली जाती हैं, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि जब वो भारत आए थे यानी कि सन 1600 के आसपास, तो अयोध्या में मंदिर था, ये उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने मस्जिद के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। बस ये रेफरेंस आप याद कर लीजिए, मेरी समझ से इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आपके मुख्य विषय के तहत मैं IPCC पर बात करने जा रहा हूं, जिसका फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आई इंटर, पी पैनल, सी क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल। दोस्तों जहां तक पर्यावरण की बात है, जलवायु परिवर्तन की बात है, यह जो संगठन है बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। याद रखिए, जब भी आपको इसका रेफरेंस पढ़ने को मिले, कुछ कोई रिपोर्ट आए, आपको तुरंत उसे नोट कर लेना चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। ये जो संगठन है हर साल रिपोर्ट देता है, और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, फिर जो बड़े बड़े जलवायु को लेकर के जो सम्मेलन होते, जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ, इस तरह के सम्मेलनों में उस पर चर्चा होती है। 1988 में इस संस्था का गठन हुआ था जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखिए ये यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, बकायदे इसकी महासभा ने इसे फिर मान्यता दी, अब ये उसी का हिस्सा माना जाता है। और जैसा कि नाम से ही है, इसका जो मेन कंसर्न है वो है कि कैसे इस धरती की जलवायु को स्टेबलाइज किया जाए। तो उसके बारे में रिपोर्ट देती है, अपने विचार व्यक्त करती है। अभी इसने जो रिपोर्ट दी है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में इसने कहा है कि हम लगातार इस कोशिश में है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। रिपोर्ट में पहली बार इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से व्यक्त किया गया है कि बेसिकली अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करना है तो उसके लिए भूमि के उचित इस्तेमाल पर जोर देना होगा। मतलब जो जमीन का हम जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग सही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जमीन के उपयोग को सही नहीं करेंगे तब तक जो हमारा औद्योगिक युग आया है उससे पहले जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होना चाहिए उस पर हम अपने टेम्परेचर को नहीं रोक सकेंगे। और आपको मालूम है कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में उसमें यही बात कही गई थी कि हम इसको यहीं रोक लें, अब टेम्परेचर है वातावरण का वो और ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसमें इन्होंने जो बात कही है, इसकी रिपोर्ट आप लोग पढ़िएगा, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। इसमें इन्होंने जो बात कही है कि असली में जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो सोखने की जो सबसे बड़ी क्षमता होती है वह भूमि में होती है, और हम भूमि की इस क्षमता को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है, चारागाह के लिए इस्तेमाल हो रही है, भूमि का क्षरण हो रहा है बाढ़ आने के कारण, अकाल पड़ने के कारण, तो भूमि का क्षरण होता चला जा रहा है। और चूंकि भूमि का क्षरण होता चला जा रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतनी नहीं सोख पा रही है जितनी कि उसे सोखनी चाहिए, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पृथ्वी पर जो गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका उत्सर्जन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो डिटेल में मित्रों आप इसे पढ़ लीजिएगा, और चूंकि अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन खासकर इसको लेकर के पर जलवायु और पर्यावरण को लेकर के होने वाले हैं, तो ऐसे समय में इसके रिपोर्ट का आना बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली इन दोनों सम्मेलनों में जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है इसी बात पर चर्चा होगी, तो बहुत बहुत और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हो गया है। इसी के साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट अभी अगस्त में आई है, सितंबर में इसकी एक और रिपोर्ट आनी है और वो होगा द ओशन एंड क्राइसोफियर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। ये रिपोर्ट आनी है अगले महीने, जैसे ये रिपोर्ट आएगी इस पर आप ध्यान रखिएगा, मैं तो कोशिश ध्यान रखूंगा ही। देखिए इसमें है वाटर, जो समुद्र है, समुद्र पे उसकी रिपोर्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्राइसोफियर की जो मैंने बात कही है, ये बेसिकली जो पानी है, पानी तो लिक्विड फॉर्म में, जहां वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो उसे क्राइसोफियर का नाम देते हैं, जैसे आइसबर्ग है, आपका बर्फ का समुद्र है, बर्फ की नदियां, ये सारी चीजें होती हैं, ग्लेशियर है, ये सब इसी क्राइसोफियर के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली ये वाटर के ऊपर है, आप कह लीजिए ओशन और क्राइसोफियर, इस पर रिपोर्ट आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं बलवीर सिंह, अमित कुमार, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद से, और चंदन साहू, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बीच के ये 2 दिन आप सबके बड़े सुखद हों, ये मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।